सत्यवचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन
आ।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 9 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, लेकिन इसके पूर्व कि हम इसमें आगे बढ़ें, आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम घर में बैठ करके रेडियो के माध्यम से आपके वचन का अध्ययन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है हम इससे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए कि आप प्रत्येक की आत्मिक आँखों को, कानों और हृदय को, विचारों को खोल दें, उन्हें एकाग्रतापन दें, ताकि जब हम आपके वचन में से सीखते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवित वचन हम में से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। प्रभु, हम नहीं जानते कि हमारे प्रिय भाई बहन इस समय किस परिस्थिति में है, लेकिन हम जानते हैं कि आप उनके साथ में हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं। आज की इस घड़ी हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रत्येक की सहायता और मदद करें। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन से दुखी और निराश हैं, चिंता और परेशानियों में हैं। हम नहीं जानते कि उनके वजह और कारण क्या है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि आप उनके साथ में हैं। पिता परमेश्वर, आप उनकी भी सहायता करें। आज के इस वचन के अध्ययन में आप हम सबको बहुतायत से आशीषित करें, ताकि इस वचन के द्वारा हम आपको महिमा दे सकें। हम में से हर एक को आपके हाथ में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम देख रहे थे कि यीशु जगत की ज्योति पर प्रवचन सुना रहा था और उसने अपने आप को परमेश्वर कहा, जो यहूदी धर्म गुरुओं ने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, तब वह उनके मध्य से चला गया, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 59 पद में देख चुके हैं। यह भी एक चमत्कार ही था कि वह उस क्रोधित और कुपित भीड़ से बाहर निकल गया, क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया था, वे उस पर हाथ नहीं डाल पाए। प्रभु के वैरी ज्योति को ग्रहण नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे आत्मिक अंधे थे। मेरे प्रिय मित्रों, हमारा जगत की ज्योति का अध्ययन अभी समाप्त नहीं हुआ है। अंधे मनुष्य के लिए आवश्यक है कि उसकी आंखें खुले, जिससे कि वह देखने में संपन्न हो। यदि कोई देख ना पाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि ज्योति नहीं है। ज्योति आंख की दशा का वर्णन करती है। इसी प्रकार जगत की ज्योति आत्मा की दशा का वर्णन करती है। फरीसी सोचते थे कि वे देखने में सक्षम थे, परंतु सत्य तो यह है कि वे भी अंधे थे। मेरे प्रियो, खदानों की एक घटना है कि एक मनुष्य विस्फोट के कारण अंधा हो गया था और वह खदान में बंद हो गया। जब राहत दल ने उसे निकाला, तब वह कहने लगा कि वे बत्ती क्यों नहीं जलाते। उसके साथी उसे आश्चर्य से देखने लगे। उन्हें तुरंत ही पता चल गया कि विस्फोट के कारण उसकी दृष्टि चली गई थी। अंधकार में उसे पता नहीं चला कि वह अंधा है। ज्योति आ जाने से उसे और उसके साथियों को पता चला कि वह अंधा है। पद 39 में यीशु के कहने का अर्थ यही था, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। अंधों को अपने अंधापन का बोध हो जाए। मेरे प्रियो, आंख वाले अंधे का एक उदाहरण है। एक बुद्धिमान वक्ता किसी प्रसिद्ध प्रचारक का प्रवचन सुन रहा था। प्रवचन के अंत में उसने कहा, वह एक अच्छा वक्ता है, परंतु वह कह क्या रहा था, यह उस बुद्धिजीवी की अंधता थी। हमारा उत्तरदायित्व है वचन सुनना। पवित्र आत्मा का कार्य है मन की आंखें खोलना कि श्रोता वचन का पालन करे। मेरे प्रियो, हमें मनुष्य में जगत की ज्योति जलाना है, परंतु पवित्र आत्मा को उनकी आंखें खोलना है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय उसके 15 और 16 में पौलुस के कहने का अर्थ यही है, हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सुसमाचार सुनाकर किसी को जीत नहीं पाए तो हम उतने ही सफल होते हैं जितने हम किसी को सुसमाचार से जीत कर होते हैं। हमें जगत की ज्योति मसीह यीशु का प्रचार करना है। यदि कोई कहे मैं इसमें बुद्धि की बात नहीं देखता तो निश्चय ही वह अंधा है। कोई अवश्य होगा जो कहेगा ज्योति दिखाने के लिए धन्यवाद, मैं अंधा था परंतु अब देखता हूँ। आइए अब हम देखें जन्म के अंधे को दृष्टिदान। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। प्रियो ध्यान दीजिएगा, यह चमत्कार यीशु के उस अद्भुत कथन के बाद का है जब उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 12 पद में, यूहन्ना 8 और 9 अध्याय के मध्य समय का अंतराल है क्योंकि यीशु यहाँ थोड़ा निश्चिंत है। चमत्कार का अभिलेख, जन्म के अंधे को दृष्टिदान का यह एकमात्र लेख है। हम यूहन्ना 9 उसके 2 पद में पढ़ते हैं, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? मेरे प्रियो ध्यान दीजिए कि शिष्य उसके अंधेपन का कारण जानना चाहते थे। उस युग में इस प्रश्न के 4 उत्तर थे। अन्य जातियां यह मानती थी कि पिछले जन्म के पाप के कारण इसका जन्म अंधेपन में हुआ है, अर्थात इस जन्म में भी दंड लाते हैं। आज भी अनेक संस्कृतियों में यह माना जाता है कि यहूदी पिछले जन्म में विश्वास नहीं करते थे, परंतु वे मानते थे कि पितरों के पाप तीसरी और चौथी पीढ़ी पर दंड लाते हैं, जैसा निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 5 में लिखा है। इसकी एक और व्याख्या है कि आदम का पाप सब मनुष्यों पर दंड लाता है। अंत में यहूदी गुरुओं का मानना था कि मनुष्य जब माँ के गर्भ में होता है तब भी पाप कर सकता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 3 से 5 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ध्यान दीजिए, यीशु के लिए न तो किसी का अतीत और न ही किसी का दोष इतना महत्वपूर्ण था जितना कि किसी का चंगा किया जाना। परमेश्वर के सर्वज्ञान में रोग, कष्ट और पीड़ाओं के अपने ही कारण है। अनेक जन हमें हमारे कष्टों के कारण समझाते हैं, परंतु वे अज्ञानी हैं, क्योंकि परमेश्वर हम पर कष्टों के कारण प्रकट नहीं करता है। वह केवल यह चाहता है कि हम अंधकार के समय में उसके निकट ही रहें। यीशु ने इसका कारण दिया कि वह परमेश्वर के कामों के प्रकट होने के लिए था। परमेश्वर ने हमें उसके महिमा के लिए बनाया है, अपनी स्वयं की महिमा के लिए नहीं। यह अंधा व्यक्ति दृष्टि पाने के द्वारा परमेश्वर के महिमान्वन का कारण होगा। वह दृष्टि पाकर संसार को देखकर प्रसन्न ही नहीं होगा, परंतु मसीह यीशु को देखेगा और उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा। मेरे प्रिय मित्र, यीशु फिर ज्योति की चर्चा करता है। अंधकार मनुष्य को अंधा कर देता है। यीशु जगत की ज्योति है, उसके बिना संसार अंधा है। जब तक वह संसार में है, संसार के पास दिन का समय है। वह आज भी पवित्र आत्मा स्वरूप संसार में है। जब तक वह हमें आत्मिक दृष्टिदान न दे हम अंधे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 6 और 7 पद में हम पढ़ते हैं, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। मेरे प्रिय मित्र, मसीह ने उसे छुआ, परंतु उसे मसीह की आज्ञा माननी थी। मसीह हमारी आत्मिक आंखों को भी छूना चाहता है कि हम और आप आत्मिक बातों को देख पाएं। जहां तक पाप का प्रश्न है, पौलुस रोम की कलीसिया को लिखता है, तीसरा अध्याय उसके 23 पद में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जी हाँ, यदि आप देखने में सक्षम नहीं हैं, तो इसका अर्थ है कि आप मसीह के पास नहीं गए हैं कि वह आपकी आंखें को छुए और चंगाई प्रदान करे। मेरे पास हमारे श्रोताओं के पत्र आते हैं, उनमें से कुछ लिखते हैं कि वे महीनों से हमारा रेडियो कार्यक्रम सुन रहे हैं, परंतु अकस्मात ही उन्होंने देखा कि मनुष्य परमेश्वर के वचन की ज्योति में है, परंतु फिर भी कहता है बत्ती तो जलाओ। यही तो पिलातुस कह रहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 38 पद में। सत्य क्या है? वह मार्ग, सत्य और जीवन के सामने खड़ा था और पूछ रहा था कि सत्य क्या है। जी हाँ, वह अंधा था। हमें मसीह को अपने आप को छूने देना है कि हम देखने योग्य हो जाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मसीह ने उसकी आंखों को छुआ, परंतु वह मसीह को देख नहीं सकता था। तब यीशु ने उसे कहा कि वह शीलोह के कुंड में आंखें धो ले। यीशु ने उसके साथ यह विधि क्यों अपनाई? मेरे विचार में इसके अनेक कारण हैं। पहला, यूहन्ना का सुसमाचार यीशु के ईश्वरत्व को प्रकट करता है, परंतु वह उसे मनुष्य भी दर्शाता है। यीशु ने अभी अपना ईश्वरत्व का दावा किया था, अब वह इस अंधे मनुष्य का स्पर्श करता है। और दूसरी बात हम देखते हैं, उसे यदि दृष्टि चाहिए तो उसे मसीह की आज्ञा का पालन करना होगा। और तीसरी बात, प्रभु यीशु ने उसे शीलोह के कुंड में आग धोने भेजा। यूहन्ना शीलोह का अर्थ भी बताता है कि भेजा हुआ। शीलोह का कुंड भी गवाह था कि यीशु को परमेश्वर पिता ने भेजा है। इसी प्रकार यीशु ने भी उस मनुष्य को वहां भेजा। और चौथी बात, उस अंधे मनुष्य को देखने के लिए जल की आवश्यकता थी। जल अर्थात परमेश्वर का वचन। यह मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के वचन के बिना मन परिवर्तन नहीं होता है। भजनकार लिखता है 119 उसके 130 में, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। और तब हम देखते हैं पांचवी बात, यहूदियों को इस गवाही की आवश्यकता थी, क्योंकि पद 29 में उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। मेरे प्रिय मित्र, इस चंगाई के काम के द्वारा वे समझ जाएंगे कि यीशु परमेश्वर पिता का भेजा हुआ है। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चंगाई की विधि का यहाँ इतना महत्व नहीं है जितना कि चंगाई देने वाले का। मसीह ने उसको दृष्टिदान दिया। उस व्यक्ति की भूमिका तो केवल विश्वास करने की थी। यीशु ने चंगाई देने में अलग विधियां काम में ली थी। इसे स्पर्श किया, किसी को केवल कहकर ही चंगा कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि जो स्पर्श द्वारा चंगा किया गया वह सबसे यही कहेगा कि स्पर्श बिना आपका अनुभव अधूरा है। आपको स्पर्श का अनुभव होना है और फिर नहाने धोने का संस्कार पूरा करना आवश्यक है। मेरे प्रिय मित्र, आज अनेक जन उद्धार के लिए संस्कार और किसी न किसी प्रकार के भावनात्मक अनुभव के बिना उद्धार को स्वीकार नहीं करते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मसीह में विश्वास करो और उसके पास आ जाओ, उसकी आज्ञा मानो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 37 में यीशु कहता है कि जो कोई उसके पास आएगा उससे वह कभी नहीं त्यागेगा, अर्थात कभी नहीं निकालेगा। प्रभु यीशु मसीह ही मुख्य आधार है। मेरे मित्र, इस घटना के माध्यम से मैं आपको अपनी दशा समझाना चाहता हूँ जो हमारे उद्धार से पूर्व हमारी थी। पहला, यह अंधा व्यक्ति मंदिर के बाहर था, अर्थात परमेश्वर से दूर। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 12 में पौलुस कहता है कि हम प्रतिज्ञा की वाचा से अनजान थे, हम में आशा नहीं थी, हम इस संसार में परमेश्वर से रहित थे। उद्धार पाने से पूर्व प्रत्येक मनुष्य की यही स्थिति होती है। और दूसरी बात हम देखते हैं, यह व्यक्ति अंधा था, वह उद्धारकर्ता को देख नहीं पाता था। जॉन हैंकॉक ने जॉन विदरस्पून का प्रवचन सुना जो यूहन्ना 10 अध्याय उसके 9 पद पर था। लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। जब वह घर जा रहा था तब उसने सोचा, मैं जॉन विदरस्पून को सराहता हूँ, परंतु आज मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। घर पहुंचकर उसने द्वार में चाबी लगाई और अपने बंगले का द्वार खोला और कहा, ओह मैं देख सकता हूँ। उसका परिवार उसकी इस बात पर हंसा और कहने लगा, क्यों नहीं, आप बाहर अंधेरे में थे और अब प्रकाश में आ गए हैं, स्पष्ट है कि आप देख सकते हैं। जी हाँ, उसने कहा, मेरे कहने का अर्थ है कि अब मेरी समझ में आया कि यीशु द्वार कैसे है। विश्वास की चाबी ताला खोलती है और अब मैं मसीह में विश्वास करता हूँ और उसे देखता भी हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु के बिना आप अंधे थे। क्या आपने उसे कभी उद्धारकर्ता के रूप में देखा था? जी नहीं, हो सकता आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम अंधे थे। अब हम देखते हैं तीसरी बात, वह जन्म का अंधा था। प्रिय मित्र, हम जन्म से ही पापी थे, हम इस संसार में पापी ही आए थे। और चौथी बात, वह व्यक्ति असाध्य रोगी था। इस संसार में हमारे पाप का उपचार किसी के पास नहीं था। और अब पांचवी बात, वह भिखारी था। हम भिखारी बनना स्वीकार नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि किसी प्रकार उद्धार को कमाएं, परंतु उद्धार बिकता नहीं। आपको परमेश्वर के आगे हाथ फैलाने हैं। यह अंधा व्यक्ति कंगाल था, उसके पास उद्धार को खरीदने के लिए कुछ भी नहीं था। यशाया कहता है, अहो सब प्यास से लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। क्या ही मधुर बात है। अब हम छठवीं बात देखते हैं, उसने यीशु से याचना नहीं की। बर्तिमाई तो पुकार रहा था, परंतु यह व्यक्ति शांत बैठा था। वह यीशु को नहीं जानता था। उसे मसीह के ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ने में समय लगा। मेरे प्रिय मित्र, क्या आप वास्तव में उद्धार पाना चाहते हैं? क्या आप मसीह यीशु की प्रतीक्षा में बैठे हैं? मेरे विचार में तो आपके पास यीशु के लिए समय ही नहीं था, परंतु वह आपकी खोज में था। मनुष्य और उसके उद्धार की यही एक कहानी है। अब हम देखते हैं सातवीं बात, उस पर किसी को दया नहीं आती थी। यहूदी उसे देखते हुए मंदिर में प्रवेश करते थे, शिष्यों ने भी उसके बारे में विवाद किया। उस पर दया दृष्टि डालने वाला कोई भी नहीं था। यह मानवीय परिवार का चित्रण है। मेरे प्रिय मित्र, यीशु को उस पर तरस आ गया। केवल यीशु ही हमारी सहायता कर सकता है। हम आगे देखते हैं चमत्कार का प्रतिक्रिया। इस व्यक्ति में आमूल परिवर्तन आया। अब वह सहारे के बिना भी अपना मार्ग देख सकता था। वह निश्चय ही कहता होगा, हल्लेलुया, मैं देख सकता हूँ। मेरे प्रिय मित्र, आज सवाल यह है कि क्या आप इस अंधे व्यक्ति की तरह अभी भी बैठे हुए हैं, या आप प्रभु यीशु मसीह के निकट आकर उस अंधेपन से छुटकारा पाने का प्रयत्न कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार इस अंधे व्यक्ति को ठीक कर सकता है, करता है, उसी प्रकार वह आपके अंधेपन को, जो आपके शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक अंधेपन को भी ठीक कर सकता है। वह आपको उद्धार दे सकता है, वह आपको उद्धार का आनंद दे सकता है। लेकिन क्या आप यीशु के पास आने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन अंधेपन की सर्जरी को करने के लिए तैयार हैं? आज सवाल है कि आप क्या करना चाहते हैं। यह निर्णय आपको खुद लेना है। क्या आप इस अंधे व्यक्ति की चंगाई पाने के बाद के बातों को कहना पसंद करेंगे, हालेलुया मैं देख सकता हूँ, आज मैं देख सकता हूँ? यह खुशी उसी को होती है जिसने इस बात का अनुभव किया है। यदि आज तक आपने ऐसा अनुभव नहीं किया है तो प्रभु के पास आएं, उससे मांगे, वह आपके जीवन में ज्योति देगा, क्योंकि वह स्वयं ज्योति है। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए। आपने फिर से इस बात का हमें स्मरण दिलाया है कि आप ज्योति हैं। आप अंधे व्यक्ति को भी ठीक कर सकते हैं, न केवल शारीरिक अंधेपन को, बल्कि आप हमारी आत्मिक अंधेपन को भी ठीक करना चाहते हैं। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहन जो आपके वचन को सुन रहे हैं, जो अभी भी आत्मिक अंधेपन से जुड़े हुए हैं, पिताजी आप उन पर तरस खाइए, उनके जीवन को स्पर्श कीजिए ताकि वे अपने जीवन से मुड़कर आपकी ओर आ सकें, उस ज्योति की ओर आ सकें, और होने दे प्रभु उनके जीवन के अंदर में आपका ज्योति प्रवेश करने पाए और वे उस सच्चाई को देखकर आपको अपने जीवन में जगह दे सकें और आप उनके जीवन के मालिक बन जाएं। आप उन्हें उद्धार का आनंद दें और अपनी महिमा उनके जीवन से लें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद के साथ विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।